मंगल करण वीतराग विज्ञान दमोताही जाते करे अरहंता दिमाग जो विद्यादि सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। महावीर भगवान की, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, अपन सब लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर विचार कर रहे हैं। संसार में जीवों की स्थिति पर विचार करते हुए आचार्य भगवंत लिखते हैं, परिणति सब जीवन की तीन भांत वर्णी, एक राग ने एक शुभ एक अशुभ एक शुद्ध वर्णी, तीन तरह के ही परिणाम अपने जीवन में होते हैं, या तो शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं या शुद्ध होते हैं। तीन ही तरह की आत्माएं हैं जो इस संसार में दिखाई पड़ती हैं। बहिरात्मा है जो शरीर को ही आत्मा मान करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा के बीच भेद विज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन व्यतीत करते, वो अंतरात्मा कहलाते। और जिनकी पूजा अपन करते हैं, जिन्होंने अपने चार घातीय कर्म या समस्त आठ कर्मों का क्षय कर लिया, ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान सकल और निकल परमात्मा कहलाते हैं। तो तीन तरह की आत्माएं। अब अपने को ये देखना है कि अच्छा जीवन तो अनंत और सिद्ध परमात्मा का है। हम अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि में हमेशा जैसा भगवान का स्वरूप है, जैसा अनंत और सिद्ध का स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप मुझे प्राप्त करना है, ये भावना रहे। इतना करने के लिए जरूरी है कि अपन भी भेद विज्ञान प्राप्त करें। शरीर को अभी तक अपन आत्मा मानते आए, वैसे तो अलग अलग मानक है, मानो शरीर के साथ सुख दुख है सो आत्मा को है ऐसा मान लेते। शरीर के जन्म होने पर अपन आत्मा का जन्म हुआ ऐसा मान करके अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, बाजी बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, ये क्या है? इतना ही नहीं, अगर शरीर का मरण होता जिसको अपन देहावसान कहते हैं, तो उसमें भी बड़े विकल और आकुल विकल हो करके संक्लेश कर लेते हैं कि बताओ आत्मा मर गई। आत्मा नहीं मरती भैया, न आत्मा जन्मती है, ये तो शरीर है जो जन्म मरण करता रहता है। अपन शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, और अपन में से 99% लोग इस तरह का व्यवहार करते हुए बहिरात्मा पने का ही अनुभव करते हैं। विचार करना, किसी के लिए बहिरात्मा कहने का भाव नहीं है, लेकिन अपन विचार करें कि अपनी दशा कैसी है, अपना व्यवहार कैसा है, ऐसा ही तो है। हमें भेद विज्ञान प्राप्त करके, दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करके, अपने जीवन को अरहंत और सिद्ध भगवान के समान विशुद्ध बनाना चाहिए, वही जीवन श्रेष्ठ है। भेद विज्ञान क्या चीज है? आपापर का भेद विज्ञान है क्या चीज? साइंस के हिसाब से अगर हम भेद विज्ञान देखें तो दो चीजें जो कि अलग अलग ही हैं लेकिन संयोग बस एक हो गई है, अनादिकालीन संस्कारों के जैसे आत्मा कर्म के साथ शरीर के साथ एक में हो गई है तो अलग अलग, उन दोनों को अलग अलग करना साइंस ऑफ सेपरेशन। भेद विज्ञान है क्या चीज? जो रॉ मटेरियल में इंप्योरिटीज है उन इंप्योरिटीज को दूर करके प्योर मटेरियल अपन प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। किट कालीमा अगर सोने के पत्थर में हो तो वो अपने गले में पहना आभूषण की तरह अपन को शोभा नहीं देता, तो अपन क्या करते हैं? सोने के पास, सुनार के पास जाकर के उसमें जितनी खोट है उस खोट को दूर करवा के शुद्ध स्वर्ण का आभूषण बना के अपने गले में धारण करके शोभायमान होते हैं। भाई ऐसा ही है, आत्मा तब शोभा को प्राप्त होती जब उसमें से कर्मों की किट कालिमा अपन निकाल देते हैं और अपने विशुद्ध वीतराग स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, तभी श्रेष्ठ और अच्छी मानी जाती। अपन कितना प्रयत्न करते हैं ये विचार करो, सुबह से शाम तक अपने और पराये के खेल में उलझे रहते हैं, सुबह से शाम तक राग द्वेष के ही निमित्त मिलने पर अपन हर्ष विषाद में सुख दुख में उलझे रहते हैं, जबकि सुख दुख में समता भाव रखने का अभ्यास जिसकी दृष्टि निर्मल है वो करता है। इतना ही नहीं, राग द्वेष के बहुत से अवसर आएंगे लेकिन उस बीच में भी वीतरागता मेरा स्वभाव है ये नहीं भूलता, जिसकी दृष्टि निर्मल है। अपन को भी ऐसी दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए जिससे अपने को भी भेद विज्ञान हो सके। भेद विज्ञान का दूसरा अर्थ साइंस ऑफ मिस्ट्री भी है। जैसे अपन कहते कि हमने तुम्हारा भेद जान लो, तुम्हारा घर का रहस्य हमने जान लिया, ऐसे ही जिसे भेद विज्ञान हो जाता है वो इस रहस्य को जान लेता है कि आत्मा तो अलग है, वो को स्वभाव अलग है और शरीर का स्वभाव तो अलग है, तो साइंस ऑफ मिस्ट्री है, रहस्य को जान लेने का विज्ञान है भेद विज्ञान। और इतना ही नहीं, साइंस ऑफ पेनिट्रेशन, किसी चीज को भेद करके उस तरफ भी निकल जाओ आर पार, उसको भी कहते अपन भेदना। तो भेद विज्ञान एक तरह का साइंस ऑफ पेनिट्रेशन है जिसमें कि हम दिखता है देह और उसके भीतर विद्यमान आत्मा को भी पहचान गए हैं, आर पार देह के भी पार कौन बैठा हुआ है, देही आत्मा, उसकी हम थोड़ी सी खबर लेना शुरू कर देते हैं। इतना ही दृष्टि की निर्मलता के लिए पर्याप्त है। सुबह से शाम तक जितनी खबर अपन देह की लेते हैं उसमें से थोड़ी सी खबर थोड़ी देखो आत्मा की भी ले लो कि मेरे आत्मा का स्वभाव कैसा है। वीत राग है लेकिन मैं तो राग द्वेष करते रहता हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा अपना कान पकड़े अपन जब राग द्वेष करें तब, दूसरे को नहीं अपनों खुद को कि क्या कर रहे भैया, ऐसा तो स्वभाव नहीं था तुम्हारा बिगड़ने का, राग द्वेष करने का, जानने देखने का स्वभाव था, तुम तो बिगड़ रहे। जानो देखो अर्थात समता भाव पूर्वक अपने जीवन का जितने क्षण व्यतीत हो जाए वही जीवन के श्रेष्ठ क्षण है, ऐसा अभ्यास अपन को करना चाहिए। अत्यंत श्रद्धा देव गुरु शास्त्र के प्रति जब होती है तब दृष्टि निर्मल होती है। अपनी श्रद्धा भी अपन देख ले कि सच्ची देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो है लेकिन इतनी प्रगाढ़ नहीं है कि अपन अपनी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो, ललक अपने भीतर हो। एक व्यक्ति था, उसकी अपने गुरु पर बहुत श्रद्धा थी, सारे आश्रम में और भी शिष्य थे, लेकिन उन शिष्यों के बीच में और माना जाता था कि भैया इनको तो गुरु जी के प्रति बहुत श्रद्धा है, उसके क्रियाकलाप से भी मालूम पड़ता था, गुरु जी के नाम से लोगों ने समझ लिया कि इससे जो करवाओ सब करते हैं, अच्छा तरीका है, दुगती रग जैसे किसी की पकड़ लो और ब्लैकमेलिंग उसके साथ करो, ठीक ऐसा ही उसका गुरु के नाम से उससे जो कहो वो कर देगा, ऐसा लोगों को मालूम पड़ गया कि बड़ी श्रद्धा है गुरु के ऊपर। तो एक दिन आश्रम में आग लगी, वहां पर कुछ सामान रखा रह गया, तो फौरन सब लोगों ने कहा कि उसी शिष्य से कहो कि अगर तुम्हें गुरु पे श्रद्धा हो तो आगे के बीच में घुस के और सामान निकाल लिया। शिष्य ने कहा इसमें क्या बात है, गुरु के प्रति तो मेरी श्रद्धा है, अभी जाके निकाल लाता हूं, और निकाल के ले आया, उस वो नहीं जला। लोगों ने तो ये सोचा था कि जी जल जाएगा, अब तो और प्रसिद्धि हो गई, लोगों ने सोची थी कि हम उसके लिए बदनाम करेंगे, लेकिन ये तो और प्रसिद्धि पा गया कि हां सचमुच बहुत श्रद्धा है, तभी तो जलाने वो। एक बार सब लोग और पहाड़ के ऊपर पहुंचे, वहां पर उस शिष्य से कहा कि अगर तुम्हारी गुरु के ऊपर श्रद्धा हो तो ये पहाड़ से छलांग लगाओ। अब लियो जी तो उपद्रव के काम हो गए, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग अपन भी तो करते हैं, क्या करें, हम तो गरीब आदमी हैं। अरे तो काहे गरीब हो, काहे ऐसे कर्म करे, अब किससे रोना रो रहे हो अपना, अपनी गरीबी का, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, भावात्मक रूप से किसी को ब्लैकमेल करना, उसकी भावनाओं को भुनाना। ऐसे ही उससे बार बार ये कह करके कि तुम तो छलांग लगा सकते हो, तुम्हारी तो गुरुजी पर बहुत श्रद्धा है, उसने कहा ये मत कहो, गुरुजी पर तो मेरी श्रद्धा है, मैं छलांग भी लगा सकता हूं, और वो पहाड़ से छलांग लगा गया। लेकिन आश्चर्य हुआ, सब तो सोच रहे थे कि नीचे गिर के मर जाए हैं, लेकिन वो तो नीचे ऐसे गिरा जैसे कि फूलों की सेज पर कूदा हो, सो बढ़िया नीचे बैठा ध्यान में, वो उसका कुछ नहीं हुआ। अब तो और ज्यादा प्रसिद्धि हो गई, जितनी जितनी लोगों ने उसकी बदनामी करनी चाहिए उतनी प्रसिद्धि होती गई, जितना उसको पतन के मार्ग पर मरने के लिए भेजा उतना अधिक वो दीर्घायु हो, इस तरह की कामना लोगों ने करी। अब क्या हुआ कि एक बार नदी के किनारे सब टहल रहे थे, किसी के मन में सूझा कि ये तो अपना कांटा है आश्रम में, सब इसी को पूछते हैं, हटाओ इसको रास्ते से, दो बार तो अपन चूक गए, अब की बार नहीं चूकेंगे, अब तो सामने नदी है, इससे ये कहो कि अगर तुम्हारी गुरु जी के प्रति बहुत श्रद्धा है तो नदी पार करो, नदी में चलो। ये बड़ा कटा कठिन काम था, सब सोच रहे थे कि वो तो थोड़ी दूर चलेगा, अभी तो डूब जाएगा नदी में, लेकिन उसने कहा कि ये मत कहो कि गुरु जी पर मेरी श्रद्धा कमजोर है, मेरी श्रद्धा गुरु पर है, मैं अभी चल के बता देता हूं। वो नदी पर पानी पर आसानी से चल करके उस पार चला गया, उस पार से इस पार आ गया, लोग सोच रहे थे कि डूब जाए है, उसका तो कुछ नहीं हुआ। इतनी प्रसिद्धि हो गई कि वो प्रसिद्धि की खबर गुरुजी तक पहुंच गई। अब गुरुजी भी हड़बड़ाए, हां वैसे ही गुरुजी थे, उनने कहा हमारे शिष्य को इतनी चमत्कारी शक्तियां मिल गई हमारे नाम से, हम भी जाकर के देखेंगे। लियो किसी के लिए श्रद्धा हो, जिस पे श्रद्धा हो उस व्यक्ति के मन में भी संदेह रह सकता है, अपने ही प्रति संदेह। गुरुजी देखने के लिए आए कि कैसे भाई, जब आगी लगी थी तो तुम आगी में प्रवेश कर गए, पहाड़ से कूदे तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, और नदी में भी तुम चल करके पार करके और वापस आ गए, ये सब कैसे किया? उस शिष्य को बहुत दुख हुआ। लोग पूछते थे तो वो यही कहता था कि गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा से, और गुरु जी खुद पूछ रहे हैं, अत्यंत संकुचित होकर सिर झुका करके दुखी होकर के उसने कहा, आपके प्रति श्रद्धा है, आपकी कृपा से ये सब हो गया, पर इतना जरूर कहूंगा कि सब आपकी कृपा से हुआ, लेकिन आप ही ने पूछ करके मेरे ऊपर अपना अविश्वास व्यक्त कर दिया। दुनिया तो विश्वास करती है, पर आप मेरे गुरु होकर के भी मेरी इस तरह की कृपा के बावजूद भी आप ही की कृपा से सब हुआ, लेकिन उस पर भी आपको विश्वास नहीं है। भैया, अपने जीवन में भी क्या ऐसा श्रद्धान है? बाकी चीज तो बाद की है। ने अपन को आगी में घुसने आए, उनने पहाड़ से कूदवे की कैरों को, उनने नदी में चलवे की, लेकिन अपने जीवन को अच्छा बनाने की अपने भीतर ललक है कि नहीं? अपनी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर इतनी प्रकार श्रद्धा है, लेकिन दो रुपया की है। अगर कोई दो पांच रुपया दे के कहवे कि जी ले लो तुम मंदिर जाओ बंद कर दो, तो अपन बंद कर दे, हाँ हमें तो पैसा चाहिए, हम बदल लेंगे अपनी श्रद्धा को, बदल लेंगे पैसे के पीछे, थोड़े से संसार के सुखों के पीछे, यही तो करते हैं अपन संसार के सुखों के पीछे, और अपन सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा को कमजोर बना देते हैं। अपन को क्या सीखना है भैया? अपन को अपनी श्रद्धा अगर है तो उसे दृढ़ बनाना सीखना है, और दृढ़ता श्रद्धा में तब आती है जबकि उसमें जो इन्फर्मिटीज है, जो दोष है, वो धीरे धीरे करके निकलते जाए, अपनी भूलें निकल जावे तो श्रद्धा दृढ़ हो जावे। अपन जितनी भूलें करते जाएंगे तो श्रद्धा और कमजोर हो जाएगी, और कमजोर श्रद्धा होने से दृष्टि की निर्मलता नहीं होने पर, और अपने जीवन को अपन परम पद में स्थापित करने के योग्य नहीं हो पाएंगे, परमात्मा नहीं बन पाएंगे। ऐसा विचार अपने को करके अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए अपनी भूलों को समझकर खुद निकालना, दूसरों अपनी भूलें कह भेजा थोड़ी, दूसरा कहेगा तो अपने अहंकार को चोट पहुंचेगी कि बता जी हमारी गलती बता रहे, नहीं अपने आप अपनी गलती देखना सीख ले। कसौटी आचारी भगवंतों ने दी है कि इस कसौटी पे दूसरे को नहीं अपने को कस के देखो अपनी श्रद्धा को, कि मेरी श्रद्धा में कहीं कोई कमजोरी तो नहीं है। उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पछाड़। छह द्रव्यों में से पांच द्रव्यों से पृथक मेरा आत्म द्रव्य है, मैं उसके स्वरूप को नहीं जान करके और उद्गल में या देह में ही अपने आप को मान लेता हूं, मैं देह को ही आत्मा मान करके जीता हूं, व्यवहार भी ऐसा ही करता हूं। आचार्य महाराज तो कहते हैं कि बताओ, अपन कहते हैं कि श्रद्धान है, लेकिन जब अपन सोते हैं तो ऐसा कहते हैं कि मैं इसको सुला रहा हूं, इस देह को। अपन तो ये कहते कि हम सो रहे हैं, अब हल्ला न करिए, तुम अब भोजन कर रहे हो, तुम डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसे कि अपन भोजन कर रहे हो, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये व्यवहार करते हैं अपन, नहीं मैं सुला रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, ऐसा अपने मन में विचार भाव तक में नहीं आता। व्यवहार में तो कहने में तो यही आएगा, लेकिन अंतरंग में तो ये रहे कि भाई मैं सो नहीं रहा हूं, ये देह के संस्कारवश संयोग पर्याय की वजह से मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूं, मेरा स्वभाव तो इन सब से पृथक है, ऐसा अपने भीतर क्या भाव आता है? नहीं आता तो सुधारो भैया, अपनी भूल को अपन ही सुधारेंगे, कोई दूसरा थोड़ी आकर सुधारेगा। तो पहले नंबर सात तत्वों में से पहले तत्व की भूल, जीव तत्व की भूल यही है कि सब द्रव्यों से अपना स्वभाव अलग है, लेकिन अपन पर द्रव्य के समान ही अपने स्वभाव को मान करके उसी में आपा मान लेते हैं और इस तरह अपना जीवन जी करके व्यतीत कर देते। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको ना समान। अब बताओ जी, अपन पहले ही कह चुके कि जैसे ही शरीर उत्पन्न होता है तो अपन सोचते आत्मा उत्पन्न भाई, जैसे ही शरीर मरता है अपन कहते आत्मा मर गई। जी तो भाई, अजीव तत्व के बारे में सही सही ज्ञान नहीं है, जिसमें रूप रस गंध और आपके स्पर्श होता है, ये तो पुद्गल का ही स्वभाव है। मेरा स्वभाव थोड़ा ही है, रूप रस गंध स्पर्श जिसमें है वो मरा है, या कि मैं मरा हूं आत्मा मरी है। आपके राम तीर्थ थे या राम कृष्ण, नाम तो पक्की नहीं पता, वो डेथ बेड पर पड़े थे, अब उनका मरण होने ही वाला था, तो शारदा मां थी तो वो रोने लगी कि अब तो आखिरी समय है, ऐसा सोच करके। तो उनको रोते देख करके और रामकृष्ण क्या बोले, राम तीर्थ जो भी हो, तो कहने लगे कि सुनो, अगर तुमने इस देह को राम तीर्थ माना हो तो रो लो, कैसे जब मरने वाली है खूब रो लो, और अगर तुमने इस देह के भीतर राम तीर्थ कोई आत्मा बैठी है तो वो नहीं मनने वाली, इसलिए चुप हो जा, इसलिए रोने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने इस देह में बैठे हुए आत्मा को राम तीर्थ माना है तो वो तो शाश्वत है, वो कहीं और जन्म ले लेगा, तुम्हारे रोने से क्या लाभ होने वाला है। ऐसा उपदेश दिया था मरण के समय, और अपन तो अजीव तत्व को ही जीव मान लेते हैं और उसके ही उत्पन्न होने और नष्ट होने में अपना ही उत्पन्न और नष्ट होना मान करके भ्रम पूर्वक अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और ऐसे ही जीते रहते हैं। कुछ थोड़ी, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ थोड़ी सी क्रियाएं धर्म की दोहरा लेने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता, धर्म का अनुयायी तो हो सकता है कि भैया जी धर्म के अनुयायी हैं, इनकी धर्म के प्रति लगन है, लेकिन धर्म का स्वरूप मालूम हो तब धर्मात्मा कहलाएगा। अकेले धर्म की क्रियाएं दोहरा लेने से धर्मात्मा हो जाए तो बहुत आसान था, अपन सब जने हो जाते और अपनों कल्याण हो जाते, तो काय बैठे हुए थे संसार में। इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अपने भीतर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, अपने भीतर अज्ञानता और भ्रम इतना छाया हुआ है कि अपन उसको दूर करने का उपाय नहीं करते। रागादि प्रकट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। राग द्वेष जिनसे कि संसार होता है, आश्रव तत्व है, राग द्वेष करने से आश्रव और संसार बढ़ता है, लेकिन रागादि प्रकट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, उनमें ही अपन सुख मान रहे हैं जिनसे कि दुख लगता है, और ले लो फलानी चीज ले ले अपन, सो अपन को बहुत सुख हो जाए, बा खरीद लो एक मोटर खरीद लो, वो में घूमन लगे बहुत सुखी हो जाएंगे, उनके तो है मोटर अपने नहीं है मोटर। इस तरह जिन चीजों में सुख नहीं है उनमें सुख का कल्पना करके और अपन उनको जुटाने में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, क्या ये अपनी भूल नहीं है? विचार करो कि हाँ हम भूल तो कर ही रहे, कम से कम इतना तो स्वीकार करो कि जी हमारी गलती है, हमें इसे सुधारना है। कैसे सुधरेगी भैया? अपने प्रयत्न से ही सुधरेगी, दूसरे से कहने सुनने से नहीं सुधरेगी। अपन को अपने भीतर भूल है ये मालूम पड़ जाए और फिर उस भूल को निकालने का क्या उपाय है ये अपन धीरे धीरे करें तो भूल दूर हो जाएगी। हम राग द्वेष परिणामों को ही सुख का कारण मानते हैं और दिन रात राग द्वेष ही करते रहते हैं, और वो आश्रव तत्व है जबकि संसार को बढ़ाने वाला है। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। बंद तत्व के बारे में अपनी भूल भीतर पड़ी हुई है कि जो शुभ अशुभ कर्म अपना फल देते हैं, जब शुभ अपना फल देता है, पुण्य अपना फल देता है, तो बड़ा सुख, भौतिक सुख मिलता उसमें, अपन राग करके और प्रसन्न हो करके अपना जीवन व्यतीत करते गवाओ तो सब अच्छो चल रहो। का अच्छो चल रहो भैया? बहुत भौतिक सुख है जो ही अच्छो चल रहो, अच्छी पैसा है, अच्छी कपड़ा लगता है, पैर भी खो और खा भी खो, अच्छी चीजें हैं, जो ही सुख है, इतना ही सुख है। नहीं, इससे भी बड़ा सुख चाहिए मुझे, मैं इतने छोटे सस्ते सुख में नहीं मानने वाला, ऐसा विचार अपने भीतर आना चाहिए। मैं तो आत्म सुख प्राप्त करके रहूंगा, ये भौतिक सुख तो मेरे शुभ कर्म के उदय से मिला है, अशुभ कर्म का उदय आ जाएगा सो अब भी सबरा सुख छिन जाएगा और दुख आ जाएगा। जितना भी सुख दुख संसार का है मेरे शुभ अशुभ कर्मों की वजह से है, मैं उसमें ही हर्ष विषाद करके अपना संसार बढ़ाता हूं, अहंकार और संक्लेश कर लेता हूं, और जिससे कि संसार ही बढ़ता है। ये तो बंद है भाई, ये तो संसार के बंद की भूल हो जाएगी कि मैं बंद को ही श्रेष्ठ मान लूं। फिर कहते हैं कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपखों कष्ट दान। संबर तत्व जिससे कि अपना संसार छूट जाएगा, अपन अच्छे बन जाएंगे, अपन मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जहां आत्मा के ज्ञान की बात हुए वो रुचिकर नहीं लगती। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, जिस ज्ञान के प्राप्त करने से संसार से विरक्ति हो जाए, पांच इंद्री और मन के विषयों से विरक्ति हो जाए, ऐसा ज्ञान, अरे हमें काकन्ने ऐसो तुम तो ऐसो ज्ञान बताओ कि जिसे पांच इंद्री और मन के विषय खूब अनाप शनाप अच्छे मिल जाए अपन को। अपनी कोशिश ये रहती है कि पांच इंद्री और मन के विषय मिल जाए, लेकिन सच्चा ज्ञान वो है कि जो पांच इंद्री और मन के विषयों से अपन को विरक्त कर दे। जी अपनी भूल है कि नहीं? आचार्य भगवंत हम पर कृपा करके उपकार कर रहे हैं कि हमें अपनी गलतियां देखने का मौका दे रहे हैं कि देखो अपने भीतर झांक के देखो कि तुम ऐसी भूल कर रहे। और कोई कहेगा इस भूल को तो अपन को अच्छा नहीं लगेगा, अपन ही खुद देखें कि हाँ ऐसे ही परिणाम तो मेरे हैं। मैं जहां जहां आत्मा के ज्ञान की चर्चा चलती है वहां पर रुचि नहीं लेता हूं, भौतिक ज्ञान में मेरी रुचि बहुत है, संसार बढ़ाने वाले ज्ञान को हासिल करने में, उन चीजों का परिचय करने में मेरी रुचि बहुत है, जिससे राग द्वेष कम हो, मेरे परिणाम वितरागता की तरफ जाएं, इस चीज में मेरी रुचि नहीं। भैया कम से कम रुचि तो हो, न प्राप्त हो पाए है तो थोड़ी सी तो रुचि है। जब तो अपन भगत या उत घर से छोड़ के कि चलो दो बातें धर्म की सुन लें, आत्मा के ज्ञान की बातें सुन लेंगे, इतनी तो रुचि है। इस रुचि को और बढ़ाएं कि हमेशा सुबह से शाम तक दो मिनट अपने पास समय निकले, 24 घंटा में से दो मिनट निकालो अपने पास के भैया मेरा स्वभाव तो बीत राग है, मुझे समता पूर्वक जीना है, बहुत हो गया राग द्वेष, बहुत हो गई विषमता, जिसी सुख दुख में पड़े रहेंगे क्या जीवन भर, इसी के लिए हम मनुष्य होकर के पैदा हुए थे, ऐसा विचार अपन करें, किसी और के कहने से नहीं, अपन अपने भीतर झांक के देखें कि देखो अपन यही तो कर रहे हैं, ये अपनी भूल है। रोके न चाह निज शक्ति खोए, निरंतर सुबह से शाम तक आकांक्षाओं से घिरे रहते। मैं तो देख करके आश्चर्य करता हूं, पशुओं को सबको होगा आश्चर्य कि सुबह से आंख खुली सुकाई की खोज, इतने मोमार वो नादी में घुस, उतने से सुबह से खाने की चीजें कहीं पड़ी हो तो उनको बीन उनको खा, सुबह से शाम तक क्या करते रहते पशु लोग, अपने खाने के इंतजाम में इधर से उधर भटकते रहते। और कुछ करते हैं क्या? शास्त्र प्रवचन सनत का नहीं सुना? हमारी स्थिति भी पशु के स्तर पर ना हो जाए, हम अपनी अच्छी बुरी सब आकांक्षाओं की पूर्ति में ही न लगे रह जाए, नहीं तो जीवन तो इतना अच्छा मिला और वो अपने हाथ से व्यर्थ ही चला जाएगा। ऐसा विचार करें अपन और अपनी खोटी इच्छाओं को तो कम से कम रोके। रोक अपनी इच्छाओं को रोकने को ही तप कहते हैं, और तप से ही निर्जरा हो सकती है, और अगर निद्रा तत्व के बारे में अपनी भूल है तो निरंतर आकांक्षाएं करेंगे और उनकी पूर्ति में लगे रहेंगे। संतोष पूर्वक अपने जीवन को जीने का अपने लिए संकल्प करना चाहिए कि शेष जीवन जितना रहा ज्यादा आकांक्षाएं नहीं भैया, खोटी आकांक्षाएं तो करेंगे ही नहीं, जो आवश्यक है उतनी ही चीजें हमें चाहिए और हमें अनाप शनाप नहीं चाहिए, बहुत है, बहुत कर लो हमने, जिंदगी निकल गई, ऐसा विचार अपने भीतर आवे। निज रूप शिव रूप निराकुलता न जोए, आत्मा का स्वभाव मोक्ष का स्वभाव क्या है, मोक्ष में क्या स्थिति बनती है, शिव रूप निराकुलता न जोए। दो मिनट भी 24 घंटे में ऐसे नहीं व्यतीत होते कि निराकुल हो अपन, कोनो बात की आकुलता नहीं है, ऐसे क्षण है अपने पास नहीं है भैया, लाने की कोशिश करें अपन कि कुछ क्षण ऐसे भी तो हैं जिसमें कि हमें न घर गृहस्थी का विकल्प है न संसार की किसी बात का विकल्प है, हम तो निराकुल होकर के अपना धर्म ध्यान कर रहे, लेकिन धर्म ध्यान करत में भी आहार देत में भी तीन दफे घड़ी पे ध्यान चलो, पे ध्यान चलो जी के कितनी बज गए, चल ले हमें अब वो काम करने फलानो, कौन सो काम, संसारी को तो काम है, ये तो मेरे कल्याण का काम कर रहा था, उसमें ही मुझे बार बार आकुलता हो रही, मन नहीं लग रहा है, तब तो मैं बार बार उस तरफ ध्यान दे रहा हूं कि जल्दी से हो जाए तो जो काम, और हम तो अपना संसार का काम करते, आकुलता के काम करने में जितनी रुचि है उतनी निराकुलता के काम करने में अपनी रुचि नहीं जमती है, क्या करें, अनादिकाल के संस्कार यही तो है अपने भीतर पड़े हुए हैं, अपन को ही निकालना पड़ेगा भैया, और तो कोई यहां पर नहीं है जो अपने भीतर हाथ डाल के और सबरो कचरा बाहर करके अपन को शुद्ध कर देवे, ऐसा तो है नहीं, भगवान महावीर स्वामी भी यहां है सो अपनों ही कल्याण करके चले गए, अपना तो कुछ नहीं किया उनने, बस कल्याण का रास्ता जरूर बता गए कि तुम भी ऐसा चलोगे तो हम तक पहुंच जाओगे, अपन भगवान महावीर स्वामी ने जो मार्ग बताया जो आचार्यों ने उपदेश दिया अगर उसके अनुसार अपन भी करते हैं तो पहले जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो अंग्रेज लोगों ने उसको नोबेल प्राइज दी, जब उसको नोबेल प्राइज मिली तो भारत के लोगों ने भी तालियां बजाना शुरू करी, अपन तो अपनी चीज खो, इज्जत तो बाद में कर पाऊ जब और दूसरे करें इज्जत, सो उनकी गीतांजलि बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब बाजू में जो था पड़ोसी उसके मन में एक दिन आया मिल गए रविन्द्रनाथ, सो बोले कि टैगोर जी आपने गीतांजलि में भगवान के तत्व गीत लिखे, इतनी प्रशंसा करी, कबूं भगवान से साक्षात्कार भाव, अब तो घबरा गए वो रविन्द्रनाथ कि सही में हमने इतने तो भगवान की प्रशंसा और इतने गीत लिखे भगवान से कबूं नहीं मिले, अब उनका बाहर निकलना मिलना जुलना बंद हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर का पड़ोसी के सामने ना आऊं किसी से मिलूं भी नहीं, नहीं तो क्या जवाब है मेरे पास कि मैंने भगवान का साक्षात्कार किए ही बिना भगवान के गीत गाए हैं और मेरी गीतांजलि नोबेल प्राइज उसको मिला हुआ है, पुरस्कृत हुई है, इस संकोचवश और महीने भर तक वो घर से बाहर तक नहीं निकलते थे कि लोगों का कैसे सामना करेंगे, है तो बात सच्ची, अपन से कोई कह देवे कि काय भैया इतनी तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, इतनो तो हल्ला मचाऊ जे जे कार करत कछु जीवन में आओ, अपन भी शर्म के मारे सिर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे, होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी अगर श्रद्धा है, देखो महाराज रोज रोज कहते कि हम तो सब कछु कह जा रहे मनो को सुनता ही नहीं है, सुनने का मतलब क्या, इन कानों से नहीं सुना जाता भैया, इन कानों से तो कोई भी सुन लेगा, दो इंद्री से लेकर के बोलने की क्षमता आ जाती, संगी पंच वो पंचेंद्रिय संगी हो गए तो वो भी सुन ले, दो के भी कान है, कानों से सुनना नहीं, सुनना तो हृदय से होता है, देखना इन चर्म चक्षुओं से नहीं होता, देखना तो श्रद्धा से होता, हृदय से होता, जी अपन को सीखना चाहिए, क्यों अपन धर्म ध्यान कर रहे, इसलिए कि मेरे श्रद्धा की आंख उत्पन्न हो जिससे कि मैं संसार की वास्तविकता देख सकूं, मैं जिनवाणी को सुन सकूं, मुझे ऐसे हृदय के कान मिले जिससे कि मैं सुनी हुई बात को अमल करके अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। अब महीने भर के बाद उनके मन में आया कि ऐसे तो हम घर में घुसे रहे सो बीमार ही हो जाए, अपन को जब कोई न मिले ऐसे समय चुनो बाहर घूम के आ जाएंगे, सो सुबह सुबह तो कोई भी नहीं मिलेगा, ऐसा सोच करके और वो जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वैसे चले गए। अब बंगाल में तो स्थिति यह है कि हर घर के सामने एक पोखर बनी, एक तालाब छोटा सा, जिनको अपन गड्ढा कहते हैं कि गड्ढा सो खुदो हो में कीचड़ भरो है, पानी भरो है। क्यों बनाते हैं वो? क्योंकि उसमें मछलियों का पालन करते हैं, वो मछली भात का ही भक्षण करने वाले लोग हैं अधिकांश। वो मछली को जल तुरई मानते हैं, बताइए आप। जैसे अपन तुरई खाते हैं सब्जी है, वो उसको भी मछली को सब्जी मान करके खाते हैं। ऐसी सबके घर के सामने कीचड़ से भरे हुए, पानी से भरे हुए पोखर बने थे। सो टहलते टहलते वो एक जगह खड़े हो गए पोखर के किनारे। तो पोखर में झांक करके देखा, अभी सूर्य उगा नहीं था, चंद्रमा गया नहीं था, थोड़ा थोड़ा धुंधल का था सुबह का। तो चंद्रमा चूंकि पूर्णिमा का था, खूब तेज था उसका, वो उसमें पोखर में चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा था। गंदा पानी है, कीचड़ है, और उसमें भी चंद्रमा अपनी पूरी लाइट के साथ स्वच्छ चमक रहा था। बस इतना देखना मात्र था, और बहुत प्रसन्न वहां से भागते हुए आए। तो अपने घरे तो बाद में गए, पहले 5 बजे रात को बाजू वाले के दरवाजे पड़ोसी के खटखटाए के खोलो हम मिलवो चाहत, और जब बतत फिर रही थी जबकि उनसे कि नहीं मिलने पड़े, और अब आज उससे मिलने गए। तो दरवाजा जैसे ही उसने खोला तो कहा कि तुम मुझसे पूछते थे कि जिस भगवान के गीत गाए हैं उसका साक्षात्कार हुआ कि नहीं। हाँ, जिस समय मैंने गीत गाए थे उस समय तो नहीं हुआ था, लेकिन आज तो साक्षात्कार हो गया। जैसे कि गंदे जल में कीचड़ में भी स्वच्छ चंद्रमा पड़ा हुआ है, ऐसे ही मेरी इस देह के भीतर परमात्म तत्व बैठा हुआ है, ये श्रद्धान मुझे आज वो दृश्य देख करके हो गया। अब मैं कह सकता हूं कि मेरा परमात्मा से साक्षात्कार हो गया। भैया, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान आ जावे, जो ही तो भगवान मिलवो है, जो ही तो भगवान से साक्षात्कार है। जैसा वीतराग स्वरूप भगवान का है, वैसा ही मेरे इस सड़े शरीर में, इस राग द्वेष से मलिन विकार से युक्त शरीर में भी मेरे शुद्ध स्वरूप से युक्त वो आत्मा बैठी हुई है, जिसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं, मेरा ध्यान ही नहीं जाता। कम से कम थोड़ा ध्यान उसकी तरफ चला जाए तो अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए बड़ा सौभाग्य अपन का हो जाए, क्योंकि मनुष्य पर्याय तो अपन ने पा ही ली है। इतना प्रयास करके अपने जीवन को और अच्छा बनाए, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ,
हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वन चारे चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर पुरतल वर्षा की घड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़िया,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
सादानी क्या
सम की अविनश्वर मणिया
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम
उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ के
कवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि राज महम
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भूमि सागर जी महाराज चरणों में अर्घ्य निर्पामित स्वामी
मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु शिव कानी है
श्याम द्रव्य जान वे को मंद विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है
अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को काबू न सताए वे को भव्य और आनी है
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही दीवाणी है
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो हे दिनवाणी भारती तो ये तपो दिन रहें जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख
समाज है समाज में चार लोग हैं चारों के अलग अलग विचार हैं बताइए वो समाज संगठित होकर के कुछ काम कर सकेगा मान लीजिएगा एक देश है और देश में चार अलग अलग पार्टियां हैं और वे सब अलग अलग दिशाओं में जाएं तो बताइए देश का विकास होगा ऐसे ही तो जीवन है जहां परिवार समाज और राष्ट्र की बात अपन करते ऐसे ही अगर अपने जीवन में हम देखें कि हमारे जीवन में हमारा मन कभी कुछ सोचे कभी कुछ सोचे अपने ही मन में हम तरह तरह से विचार उत्पन्न करके उनका आग्रह करें तो क्या स्थिति बनेगी हमारे स्वयं के जीवन की हमारा जीवन भी तहस नहस हो जाएगा एक विचार जो कि जीवन को संगठित करे जो कि परिवार को संगठित करे जो देश और समाज को संगठित करे वह विचार ही श्रेष्ठ विचार है बाकी विचारों का आग्रह नहीं होना चाहिए ये अपन लोगों को हमेशा रहता है सबके मन में रहता है कि मेरे विचार ही श्रेष्ठ हैं मेरे विचार के अनुसार ही कार्य होना चाहिए ऐसा अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोपने का जो भाव है वो हमारे जीवन के विकास में बहुत बड़ा अवरोध है मानो कि नदी के प्रवाह में पत्थर आ गया है ऐसा ही और तीसरा हम कर्म करते हैं सुबह से शाम तक वो हमारा व्यवहार है उसे हम कर्म कहें या कि अपना व्यवहार करें तो हम अपने व्यवहार में देखें कि व्यवहार हमारा असंतुलित नहीं होना चाहिए व्यवहार हमारा जितना हो सके संतुलित हो संतुलित व्यवहार किसे कहें जिसमें सबका ख्याल हो जिसमें सह अस्तित्व की भावना हो जिसके साथ हम रहते हैं उसके साथ हमें किस तरह रहना चाहिए चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो चाहे और परिवेश हो सबके साथ में सह अस्तित्व की भावना जैसे कि एक बहुत बड़ी मशीन हो और उस मशीन में से अपन सोचें कि अरे ये तो इतना छोटा सा पैंच है इतना छोटा सा पुर्जा है इसका क्या इतनी बड़ी मशीन में क्या महत्व है तो निकाल दो वहां से तो आप उस छोटे से पुर्जे को मशीन में से निकालेंगे तो हो सकता मशीन ही ठप हो जाए वो छोटा सा पुर्जा दिख रहा है मशीन में बहुत छोटा सा लेकिन उसका भी वहां पर महत्व है ऐसे ही जिसके साथ भी हम रहते हैं वो चाहे वो एक इंद्री जीव भी क्यों ना हो बहुत क्षुद्र सा दिखाई पड़ने वाला कीड़ा भी क्यों ना हो उसका भी अपना जीवन है उसका भी अपना महत्व है मेरे व्यवहार का संतुलन ये है कि मैं उसका भी ध्यान रखूं मैं अपना जीवन तो जीऊं लेकिन उसके जीवन में बाधक ना बनूं मैं उसके जीवन में कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके जीवन जीने में मेरे जीवन से अगर बाधा उत्पन्न हो तो ये तो मेरे व्यवहार का असंतुलन होगा। बहुत कठिन है, पर विचार तो होना चाहिए अपने भीतर इस तरह का। सुबह से शाम तक हम अपना व्यवहार करते हैं इस संसार में, और हम देखते हैं कि उस व्यवहार में हम बहुत चूक जाते हैं, और वह जो व्यवहार में हमारा चूक जाना है वो किसी और का घाटा नहीं करता भैया, हमारा खुद का घाटा करता है। लगता जरूर है कि वो चलो चलते ही है, ऐसा तो सब चलता है, तो संसार में तो चल जाएगा, लेकिन अपने जीवन के बारे में क्या करोगे? अपना जीवन ऐसे ही चलेगा तो संसार ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसा विचार आना चाहिए मन में। कितना कर पाएंगे ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन करना चाहिए ये संकल्प हमारा। कितना कर पाए ये तो हमारे ऊपर, हमारी क्षमता पर निर्भर होता है। एक तितली है, जरा सी दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर हम खेल खेल में उसे नष्ट कर दें तो मानिएगा कितने सारे फूल जो खिलने वाले थे वो नहीं खिल पाएंगे। उनके परागण में उस तितली का बहुत महत्व है। एक छोटा सा दिखता है बादल का टुकड़ा, लेकिन वो बादल का टुकड़ा नहीं बरसे और नष्ट हो जाए अगर, तो बताइएगा हमारा जीवन ही बहुत मुश्किल में पड़ जाए। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें जो अपन को जान पड़ती हैं कि इनका कोई महत्व नहीं, बहुत महत्वहीन है ये चीजें, ऐसा नहीं समझें। यहाँ पर जो भी है वो अपना अपनी जगह पर बहुत महत्व रखता है। ऐसा विचार करके फिर अपना व्यवहार करें, अपना जीवन जिए, तो ये तीनों चीजें भी अगर व्यवस्थित हों, वचन हमारे बोलने से पहले हम देख लें कि कोई विवाद उत्पन्न होता हो तो वचन वापस ले लिए, घर गृहस्थी में ये तीनों चीजें अप्लाई करें। वचन और विचार ये दोनों अनेकांत हैं भैया, हमारे जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है अनेकांत। वचन हो पर विवाद नहीं हो, विचार हो लेकिन आग्रह नहीं हो, ये अनेकांत की पद्धति है। और व्यवहार में संतुलन यानी दूसरे के जीवन का भी महत्व है, अगर ये विचार है तो वो अहिंसा है। दो ही चीजें हैं, अहिंसा और अनेकांत। इसको दूसरे शब्दों में कह लें, ये हमारी मौलिकता है। हम अपनी मौलिकता को छोड़कर के, वो जो हम अपनी मौलिकता को छोड़कर कृत्रिमता की तरफ बढ़ रहे हैं, वही तो हमारे विकास में अवरोध है। लेकिन ये चीज सहसा अपन को समझ में नहीं आती, कितना अपना जीवन और अपने मौलिक स्वभाव को छोड़ करके कितना विकृतियों की तरफ चला जा रहा है, कितना कृत्रिमताओं की तरफ चला जा रहा है, इसी वजह से चला जा रहा है। छोटे छोटे से चीजों को हम बहुत समझ ना पाने की वजह से, अज्ञानता की वजह से, जैसा संतुलित जीवन जीना चाहिए वैसा नहीं जी पाते हैं, और अपनी इस मौलिकता को, अनेकांत और अहिंसा को भूल करके और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमें थोड़ी सी सावधानी रख करके अपनी इस मौलिकता को पहचानना चाहिए। हमें वचन मिले हैं, बहुत मौलिक है। हमें विचार की सामर्थ्य मिली है, बहुत मौलिक है। हमें कर्म करने की सामर्थ्य मिली है, हमारा व्यवहार अपनी हमारा मौलिक है। क्यों हम उसके लिए और ठीक ठीक ढंग से और उपयोग ना करें जो चीजें मिली हुई हैं? करना चाहिए, इन तीनों का सदुपयोग करना अगर सीख ले कोई व्यक्ति तो मुझे लगता है और बहुत आवश्यकता नहीं है इस संसार में। अपन ने कितनी सारी बातें तो समझी हैं, लेकिन कई बार लगने लगता है कि वो सारी बातें भी नहीं समझ में आवे, तो जो जो प्राप्त है उसका सदुपयोग भी हम कर लें तो भी हमारा जीवन बहुत आसानी से हम अच्छा बना सकते हैं। उस विचारों उसके मैं आपसे कह रहा हूं कि व्यवहार के संतुलन की बात आपसे कहूं, तो व्यवहार में संतुलन तभी आता है जबकि हम दूसरे व्यक्ति का भी उतना ही महत्व तो समझते हैं जितना कि अपना महत्व हमारा है। होता नहीं है, बहुत कठिन है। हम अपना तो बहुत महत्व तो समझते हैं कि हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे का कार्य कोई खास महत्वपूर्ण नहीं, दूसरे का जीवन भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस यही मजा है संसार में और कुछ नहीं है। जरा आज आराम से जाकर के मैं सोच रहा था ऐसे ही कि आज क्या कहूंगा लोगों से, तो फिर मुझे एकदम आइडिया आया कि नहीं ये चीज तो हम लोग मिस कर रहे हैं, बहुत चूक रहे हैं इस चीज को। हमें लगता हमने जो काम करा, हम जो कर रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ, दूसरे ने करा वो कुछ भी नहीं। हमारा जीवना बहुत महत्वपूर्ण, हमारा संसार में होना बहुत महत्वपूर्ण। हम नहीं होंगे तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, लेकिन दूसरा नहीं भी रहो तो मत रहो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। सबका अपना महत्व है, सबके अपने जीवन का, सबके अपने कार्यों का महत्व है। ऐसा हमारे मन में भाव आएगा तब हमारे जीवन में अहिंसा का ये विचार आएगा। अकेले अहिंसा के मायने ये नहीं है कि चींटी पर मैंने पैर नहीं रखा है इसलिए मैं अहिंसक हो गया, पानी छान के पी लिया तो मैं अहिंसक हो गया, थाली पर मैंने जरा शोध का भोजन कर लिया तो मैं अहिंसक हो गया, जरा देखूं तो मेरे व्यवहार में क्या क्या चीजें हैं सुबह से शाम तक। मैं सिर्फ अपने को ही महत्वपूर्ण मानता हूं या कि यहां जहां जहां भी धड़कन है सबको महत्वपूर्ण मानता हूं? एक वो छोटे से पेड़ की पत्ती भी महत्वपूर्ण है, उसमें भी जीवन है, मैं उसे भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूं जितना कि अपने जीवन की सांसों को, अपनी धड़कन को महत्वपूर्ण मानता हूं, अपने कार्यों को महत्वपूर्ण मानता हूं। ये विचार हमारे भीतर जैसे जैसे डेवलप होगा वैसा हमारे आचरण में संतुलन आएगा। वरना मैं देखता हूं कि अपन सबके, मैं भी उसमें शामिल हूं, अपन सबके व्यवहार में कहीं ना कहीं असंतुलन आ ही जाता है। ये असंतुलन का कारण क्या है? इतना ही मैं तो यही खोज पाया अभी आज, तो जो विचार कर रहा था कि एक ही कारण है, मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण, सारी दुनिया बाह्यात कामों में लगी हुई, हाँ मैं जो कर रहा हूं वो सबसे श्रेष्ठ काम कर रहा हूं, बाकी दुनिया सब बाह्यात काम कर रही है। ऐसा मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अगर नहीं रहूं तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, और बाकी रहो मत रहो कोई, ये विचार तो निरंतर अपने कहते नहीं है अपन, लेकिन भीतर भीतर जीवन जीने के ढंग से तो यही मालूम पड़ता है। अपन जिस तरह जीवन जी रहे हैं उससे यही मालूम पड़ता है। भले ही कहते जरूर हैं कि परस्पर उपग्रहो जीवानाम, हाँ सब चीजें अपन को मालूम है, लेकिन परस्पर एक दूसरे के जीवन को महत्व देते हुए, एक दूसरे के कार्य को महत्व देते हुए अपना कार्य करना और अपना जीवन जीना, ये बहुत आसान नहीं है भैया, पर इसी को तो आसान बनाना है। आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, अहिंसा का विचार देकर, अनेकांत का विचार देकर के, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे व्यक्तिगत अपने जीवन में हो, ये चीज हमारे जीवन में आनी चाहिए। दो छोटी सी घटनाएं आपको बताऊं और एक बड़ी सारी घटना, बस इससे अपना काम हो जाएगा, अपने को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ठीक तो है। एक अपना चारित्र होता है, एक सामाजिक और व्यवहारिक चारित्र होता है। अपन जो व्रत नियम उपवास करते हैं वो अपने जीवन के विकास के लिए बहुत अहिंसक दृष्टि से करते हैं, इससे हमारे अपने चारित्र का विकास होता है, ये हमारे व्यवहार का संतुलन अपने प्रति है। लेकिन एक समाज में हम जिसमें रहते हैं, एक देश जिसमें रहते हैं, उसमें हमारे व्यवहार में कैसे संतुलन आएगा? एक बाबा जी जा रहे हैं ट्रेन में, ठीक है, उन्होंने देखा कि एक नवयुवक बढ़िया सूटेड बूटेड और ट्रेन में बैठा, और जो जूते थे वो तो कीचड़ में सन गए थे, पर फिर भी उसने और दोनों पैर जो है अपने गद्दी पर सीट पर रखे उस ट्रेन में और बैठ गया। तो बाबा जी फौरन उठे, उन्होंने अपने पॉकेट में से, बैग में से एक न्यूज़पेपर निकाला और उसने युवक से हाथ जोड़ के कहा कि थोड़े अपने पैर उठाना। उसने कहा क्यों उठाएं? बोले थोड़ी मेरे लिए आप कृपा करके थोड़े पैर उठाइएगा। तो उसने थोड़े पैर उठाए तो पहले वो सीट साफ करके उसके नीचे फिर कागज बिछा के कहा अब रख लो बैठ जाओ। ये क्या चीज है, बहुत कठिन है, हाँ ये कौन सा वाला चरित्र है? ये राष्ट्रीय चरित्र है, ये व्यवहार का संतुलन बाहर के जगत में है। ऐसा लगेगा कि क्या कह रहे हैं हम, ये तो अपने दिमाग में नहीं आता कभी। वो राष्ट्रीय संपत्ति है जिसका सदुपयोग करना चाहिए था, किसके मन में आता ये विचार? उसको चाहे जैसे करो, इससे मालूम पड़ता है कि हमारा व्यवहार असंतुलित है। हम जीवन जी रहे हैं लेकिन असंतुलित। मैं रोज वहां से निकलता हूं, आज मैंने पूछा कि इतना सारा कचरा
कौन डालता होगा? बोले बस यही आसपास के लोग। उसमें जैन कितने हैं? बहुत हैं जैन लोग, वो सब बाहर वहां डाल जाते हैं मुंह अंधेरे, और वहां पर सारे में फैल जाता है और वहीं रहना है। ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। भले ही हम अपने घर में बहुत साफ सुथरे हों, लेकिन अपने परिवेश को कितना गंदा रखते हैं, अपनी सारी गंदगी बाहर फेंक जाते हैं, कितना असंतुलित है हमारा व्यवहार, कभी ध्यान नहीं जाता इस चीज पर। बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूं आपसे आज, बिल्कुल धर्म की से कोई ऐसा लगेगा कि कहीं जुड़ा ही नहीं रही, वो बिल्कुल व्यवहारिक सी चीज लग रही है। तो ये व्यवहार ही जिसका संतुलित नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन को कैसे विकसित करेगा? ये विचार से विकसित होता है जीवन, आचरण विचारों से बनता है। जिसके विचारों में ये बात नहीं, उसके आचरण में ये कहां से आएगा संतुलन, बताइएगा? कितना सुबह से शाम तक अपन व्यवहार करते हैं, लेकिन सिर्फ अपना ही ख्याल रखते हैं, दूसरे का जरा भी ख्याल नहीं है आसपास परिवेश का, जबकि रहते वहीं हैं। तो इससे क्या मालूम पड़ेगा कि हमारा व्यवहार संतुलित नहीं। और दूसरा उदाहरण, एक बाबा जी जा रहे हैं ट्रेन में, देखा उन्होंने कि एक नवयुवक ने केला खाया, छिलके वहीं पर फेंक दी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, धीरे से वो छिलके उठाए, अपने बड़े सारे ओवरकोट में उनको रख लिया। दूसरे लोग हंसने लगे उन पर, देखो आप। वे कुछ नहीं बोले, पर उसमें एक और युवक था, उसे जिज्ञासा हुई। उसने कहा, बाबा जी आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले, भाई जहां बैठना है, जहां घंटे दो घंटे यात्रा करनी है, उसमें अगर इसी तरह गंदगी फैलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इस गंदगी को डालने के लिए तो स्टेशन पर डस्टबिन बनी रहती है, मैं जब स्टेशन आएगा उतरूंगा, ये उसको वहां डाल दूंगा। ये क्या चीज है? ये हमारे व्यवहार का संतुलन है। ऐसा ध्यान नहीं जाता, बहुत कठिन है। आप कर पाएंगे? अभी इतना ही कर लें आप अपने आसपास पड़ोस में, कि घर का कचरा नहीं फेंकें, कम से कम निकलने वाले को असुविधा होती है, इतना ही कर लें कम से। इतना भी ध्यान नहीं जाता है कि मैं निकलूंगा वहां से थोड़ी देर बाद, खुद व्यक्ति अपने घर की गंदगी बाहर फेंकता हो, भूल जाता कि मैं ही तो निकलूंगा वहां रास्ते से, लेकिन छुपा करके मुंह अंधेरे अपनी सारी विकृतियों को बाहर फेंकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उन विकृतियों को फेंकने से दूसरे को बाधा तो नहीं होगी, तब दूसरे की फेंकी गई विकृतियों से हमें बाधा होगी। ये अगर आ जावे सबके व्यवहार में, अगर ये चीज आ जावे, फिर देखिएगा कि कितना संतुलित हमारा सबका जीवन हो सकता है। और ये छोटी छोटी घटनाओं के बाद जो मैं आपसे कह रहा था, एक बड़ी घटना, वो भी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। आज संडे को अपन ऐसे ही मना रहे हैं, संडे की तरह बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, है ना। एक गरीब व्यक्ति था, लोगों की दृष्टियों वो गरीब था, लेकिन वो बहुत संतुष्ट व्यक्ति था। और जो जितना ज्यादा संतुष्ट है वो उतना ज्यादा समृद्धिशाली है। हाँ, और जिसके पास अपार धन राशि है लेकिन आकांक्षाएं बहुत हैं, वो तो बहुत गरीब है, वो तो मांग रहा है अभी भी। मांगने वाले को तो अपन मांगने वाला कहते हैं, लेकिन जिसके भीतर आकांक्षाएं हैं, जिसके भीतर अभी मांग बाकी है, संसार की चाहत, उसको अपन भिखारी नहीं कहते। ये संसार ऐसे ही चलता है। वो बहुत संतुष्ट था, और संतुष्ट होने की वजह से उसके घर में जितनी आवश्यक चीजें थी उतनी ही थी, अतिरिक्त तो कुछ नहीं था। अब पता नहीं क्या हुआ, किसने किसको बता दिया कि बहुत कुछ है, क्योंकि संतुष्ट था इसलिए प्रसन्न दिखता था, और कभी किसी से उसने कभी कुछ मांगा नहीं, तो लोगों को लगता था इसके पास बहुत है, सब कुछ है, इसलिए तो कभी भी किसी से मांगता नहीं और बहुत प्रसन्न दिखता है। तो एक दिन एक चोर घुस गया उसके घर में। अब चोर घुसा तो वो मुश्किल में पड़ गया। देखो अब कि हम तो सोच रहे थे कि बहुत रखा होगा यहां पर, लेकिन सब खोल खाल करके देखा, मेहनत की मेहनत हुई और मिला कुछ भी नहीं। अब उसने सोचा कि क्या किया जाए, लौटने लगा तो उतने में और आवाज आई कि खाली हाथ लौट रहे हो कि कुछ ले जा रहे हो। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ कि भाई ये तो जाग गया रखता घर का मालिक, तो सचमुच वो जाग गया था। और फिर आवाज आई, कह रहे भाई आने से पहले बता तो देते, तुम्हारे लायक थोड़ा बहुत इंतजाम कर लेता मैं, मेरे लायक तो मेरे पास पर्याप्त थे, लेकिन तुम आ रहे हो ऐसा तो मुझे मालूम नहीं था, अब आओ कभी तो बता के आया करे तो थोड़ा इंतजाम कर लूंगा, और सुनो ऐसे खाली हाथ मत लौटो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कितना व्यवहार का संतुलन है, कितना विचारों में पवित्रता है, बताइए। वो कह रहा है कि खाली हाथ मत लौटना, इतनी मेहनत करके तुम यहां पर आए मेरे घर और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं, और अपने घर में अगर कोई इस तरह से घुसे तो क्या कहेंगे। आज के समय में तो बिल्कुल बदल गया ये सब, वो तो बहुत पुराना उदाहरण सुना रहा हूं, नहीं तो आप कहो कि महाराज जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि चोर घुस जाए तो उसके साथ भी ऐसे ही करना है ना। मैं तो सिर्फ एक विचार दे रहा हूं कि क्या इस तरह का विचार अपने भीतर आता है कि नहीं आता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि इतनी आसक्ति है जोड़ के रखने की कि उसके चलते और किसी को देने का या कि कोई उठाने लगे तो सहसा अपन तैयार नहीं होते उस चीज के लिए, क्योंकि अपनी आवश्यकता के लिए अपने पास पर्याप्त होता है। फिर भी ये इसलिए वर्तमान में जो मैं बात कह रहा हूं बिल्कुल फिट नहीं बैठेगी, ये तो बहुत कोई संतुष्ट और बहुत शांतिपूर्वक जीवन जीने वाले पर ही फिट बैठेगी, वरना तो आज के समय में बिल्कुल आउट ऑफ डेट है ये चीज जो मैं कह रहा हूं। मैं खुद भी बोलते हुए सुन रहा हूं अपनी बात को कि बहुत बहुत अनफिट चीज है, लेकिन एक पढ़ा था तो लगा कि हाँ वास्तव में ऐसा भी कहीं कुछ कभी घटित होता होगा कि किसी के यहां कोई चोरी करने के मकसद से घुसे और उसको मालिक ये कहे कि जरा बता के आया करे, ऐसे में तो बहुत मुश्किल होती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाले हो, अब खाली हाथ लौटना पड़ेगा, और सुनो देखना जरा वो जो गोदरेज की अलमारी रखी हुई है उसमें पेपर के नीचे शायद एक पुराना सा नोट रखा हो, मुझे याद आता है वो बहुत दिन से पड़ा हुआ, मेरे काम ही में नहीं आया, किसी ने दिया था मुझे, शायद उससे तुम्हारा काम चल जाए, उसको बता रहे हो और कि उठा लो। तो सचमुच उसने देखा तो उसके नीचे एक मुड़ा तुड़ा सा खराब सा नोट पड़ा था 10 रुपए का, वो ले लिया, जाने लगा तो फिर वो हाथ जोड़ के कह रहा है कि ठंड तो बहुत है, इतनी ठंड में जाओगे, मुझे क्या है मैं तो घर में हूं तो थोड़ा मोड़ा चद्दर ओढ़ के ही रह जाऊंगा, लेकिन तुम ये कंबल ले लो, इतनी ठंड में कहां परेशान हो। बहुत कठिन है इस तरह का सोच आना, अपनों के प्रति भी नहीं आता, प्राणी मात्र के प्रति आना तो बहुत कठिन ही है। इसलिए तो कोई आज भगवान नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता भगवान। भगवान होने के लिए, तीर्थंकर होने के लिए कितना जबरदस्त कितना पवित्र विचार चाहिए, अभी तो अपने पास ऐसा विचार ही नहीं आता, अपन तो इसमें से तर्क करेंगे, अरे ऐसे चलता है का जीवन, तो चलाओ जैसे चलता वैसे ही संसार चलता है ऐसे।